27 नवंबर रविवार, दिनभर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। पंजाब में नाभा की जेल पर फायरिंग कर 6 कैदी को भगा ले गए हमलावर, गृहमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को किया निलंबित। संसद में खामोश प्रधानमंत्री, सीधे जनता से संवाद में जुटे, मन की बात और कुशीनगर की रैली में जमकर बोले।
पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए।
संडे दिनभर में आज खास मुलाकात मशहूर अभिनेता ओम पुरी से, सुनिएगा एक्टिंग क्लास के शानदार अनुभव। खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। भारतीय राज्य पंजाब में एक कथित सिख चरमपंथी के जेल से फरार होने के बाद पुलिस ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। पटियाला के नजदीक नाभा सेंट्रल जेल पर आज कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला किया, जिसके बाद 6 कैदी फरार बताए जा रहे हैं, जिनमें हरमिंदर सिंह मिंटू भी शामिल हैं, जो प्रतिबंधित सिख संगठन खालसा लिबरेशन फोर्स के नेता हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सतबीर सिंह बादल ने कहा है कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वो नगद लेन देन कम से कम करें और इसके बदले डिजिटल माध्यमों से भुगतान करें। 1500 के पुराने नोट बंद करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला राष्ट्रीय संबोधन था। सरकारी रेडियो के जरिए अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे कारोबारियों और युवकों से आह्वान किया कि वे आगे आएं और डिजिटल माध्यमों से भुगतान का नया चलन शुरू करें। स्विट्जरलैंड से मिल रहे शुरुआती संकेतों के मुताबिक देश के मतदाताओं ने उस जनमत संग्रह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिलसिलेवार तरीके से बंद करने की बात कही गई थी। इस जनमत संग्रह के बाद स्विट्जरलैंड की सरकार देश के 5 परमाणु संयंत्रों को बंद करना चाहती थी। इस घटनाक्रम के बारे में बर्न में रहने वाली एक महिला का कहना था। मुझे लगता है कि ये एक कुर्बानी है जो दी जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी विरोधाभास है। मेरा ये भी मानना है कि इसमें राजनीति के लिए भी एक संकेत है कि हम वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, और कभी ऐसा कोई समाधान नहीं होता जो एकदम सही हो। स्विट्जरलैंड की एक महिला के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि पूर्वी अलेप्पो के विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों से हजारों की संख्या में नागरिक रातोंरात भागकर सरकार के नियंत्रण वाले पश्चिमी इलाकों में चले गए हैं। विद्रोहियों के इलाके में मौजूद सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि हनानो जिले पर सरकार ने दोबारा नियंत्रण कर लिया है। हनानो जिला अलेप्पो का वो पहला इलाका था जिस पर साल 2012 में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। सरकारी सुरक्षा बल अब विद्रोहियों के कब्जे वाले अन्य इलाकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ईरान की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले आयतुल्ला अली मोंतजेरी के पुत्र अहमद मोंतजेरी को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई है। अहमद मोंतजेरी ने वो टेप जारी किया जिसमें उनके पिता राजनीतिक बंदियों को सामूहिक रूप से मौत की सजा दिए जाने की भर्त्सना कर रहे हैं। ईरान की मीडिया के मुताबिक अहमद मोंतजेरी को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने और दुष्प्रचार करने का दोषी पाया गया है। क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्ट्रो के निधन के एक दिन बाद भी देश शोक में डूबा हुआ है। हवाना में मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक लोग अभी भी सदमे में हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना कि पंजाब में आज सुबह एक अनोखी घटना हुई। यहां की नाफा जेल के बाहर दो गाड़ियों में आए कुछ लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और इसी बीच वहां से 6 कैदियों को निकालकर अपने साथ भगा ले गए। इस घटना के तुरंत बाद गृहमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही नाभा जेल के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। गृहमंत्री बादल ने इस मामले में पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका भी जताई है, लेकिन विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के मद्देनज़र अपराधियों को छुड़ाने के लिए जानबूझकर लापरवाही बरती गई। एक रिपोर्ट के साथ रविंदर सिंह रॉबिन।
पटियाला की नाभा जेल से रविवार सुबह 6 कुख्यात कैदी फरार हो गए हैं, जिसमें एक चरमपंथी भी शामिल है। खबर की पुष्टि पंजाब पुलिस के महानिदेशक सुरेश अरोड़ा ने की है। पंजाब भर में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है और भागे हुए कैदियों की सूचना देने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी सरकार ने कर दी है। घटना सुबह 9:30 बजे के करीब की है, जब दो गाड़ियों में पुलिस की वर्दी में आए 10 के करीब लोगों ने नाभा जेल के गेट पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी और 6 कैदियों को वहां से भगा कर ले गए। ये कैदी पहले से ही जेल के अंदर गेट के करीब खड़े थे। समझा जाता है कि यह एक पहले से घड़ित एक साजिश थी। डीजीपी ने माना कि कहीं पर बड़ी चूक हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा,
जैसा कि मैं अभी आई एम लिविंग फॉर नाभा, वहां जाके सारा देख के फिर मैं मीडिया को ब्रीफ करूं, ठीक है।
लेकिन सर, पांच लोगों ने जेल को हाईजैक कर लिया,
छह
सिक्योरिटी को लेकर कुछ
नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ तो अरेंजमेंट सारे ठीक है हमारे।
लेकिन सर, हाई सिक्योरिटी जेल है और उसमें ऐसा हो जाना, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं।
हाँ बिल्कुल, वही जाके देखता हूँ।
घटना के तुरंत बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब पुलिस के आला अफसरों के साथ बैठक कर तत्काल ही एडीजीपी एमके तिवारी को सस्पेंड कर दिया और नाभा जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त कर दिया। डिप्टी सीएम का कहना था,
मैं हुनी डीजीपी साहब ने इतों स्पेशल प्लेन नाल भेजा उ डीजी जेल्स है, डीजी जेल्स नु असी सस्पेंड कर दिता है। जिहड़ा जेल सुपरिटेंडेंट है, डायरेक्टर जनरल पुलिस जिहड़ा जेल्स है, उन्होंने असी सस्पेंड कर दिता है। जेडे असी उत्थे जेल सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने डिसमिस कर दिता है। असी एडीजीपी के थले टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी है, जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन सानू 3 दिन दसणगे लैप्सिस किने कीते, किवें कॉन्सपिरेसी थ्योरी जिहड़ी निकल रही है उन्होंने एग्जामिन करके सानू दसणगे। स्पैशल टास्क फोर्स अंडर द इंटेलिजेंस हैज बीन सेट अप टू ट्रैक डाउन दीज क्रिमिनल्स।
सुखबीर सिंह बादल ने यह भी शक जाहिर किया है कि नाभा जेल से जो 6 कैदी फरार हुए हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नाभा जेल से भागे कैदियों के पीछे अकाली सरकार को दोषी बताया है। जहां आम आदमी पार्टी ने सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मांगा है, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसमें सीधे तौर पर बादल सरकार का हाथ बताया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना था,
ये जेल ब्रेक हुई है और मैं इसको दावा करता हूँ ये गवर्नमेंट का हाथ है इसमें, और निकालने हैं लोगों को अपने इलेक्शन के लिए।
इस बीच बताते चलें कि नाभा कांड के बाद पंजाब में की गई नाकेबंदी के दौरान समाना के पास बारात में शामिल हो जा रही एक गाड़ी को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो गाड़ी रुकने के बजाय तेज हो गई, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की और इसमें एक 24 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई है। इस बीच पंजाब सरकार ने कैदियों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। सरकार का कहना है कि फरार कैदी जल्द ही पकड़े जाएंगे।
पंजाब की जेल से कैदी फरार, रिपोर्ट सुना रहे थे रविंदर सिंह रॉबिन। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के चलते अलग अलग शहरों में लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज वे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में थे। नोटबंदी के फैसले के बाद से उनकी चुनावी रैलियों के केंद्र में भी यही मुद्दा है। उन्होंने लोगों से पूछा है कि वो किसके साथ हैं। रैली से पहले प्रधानमंत्री आज सुबह आकाशवाणी में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 26वां अंक लेकर भी पहुंचे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए रोहित जोशी से।
महायोगी गोरखनाथ यही क्षेत्र के अपने तपस्या के लिए चुनल, महान संत कबीर क्षेत्र में।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आज अपनी एक चुनावी रैली के भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय भोजपुरी भाषा में की।
परिवर्तन का हुंकार फूंकले के अब समय आ गए बा, रउवा लोग अब प्रदेश के विकास।
अपने संबोधन में मोदी ने नोटबंदी पर विपक्ष की ओर से भारत बंद की आशंकाओं पर हमला बोलते हुए कहा,
पूरी ताकत से बताइए भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए, काला धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए। एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं।
उधर प्रधानमंत्री के इस आरोप को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बेबुनियाद बताया है।
हकीकत ये है
कि विरोधी लोग इनके बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले का विरोधी लोग अपने खुद के हित के लिए नहीं बल्कि इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई देश की लगभग 90% जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा ही समझकर इसका विरोध कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कुशीनगर के अपने संबोधन में नोटबंदी के बाद लोगों से अपने मोबाइल फोनों के जरिए ई बैंकिंग का इस्तेमाल करने की अपील की है।
तो आप मोबाइल फोन से जो भी खरीदना हो खरीद सकते हो, जो भी लेना हो ले सकते हो। आज आपका मोबाइल फोन, ये आपका मोबाइल फोन यही आपके बैंक की ब्रांच बन गया है, आपके हथेली में आपकी अपनी बैंक बन गई है।
लेकिन इस पर कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने एतराज जताते हुए प्रधानमंत्री पर ख्याली दुनिया में रहने का आरोप लगाया है।
ये अपनी ख्याली दुनिया में रहते हैं और गलत छवि हिंदुस्तान की दुनिया में पेश करते हैं कि भ्रष्ट लोगों का देश है और केवल भ्रष्टाचार पर भारत का अर्थतंत्र टिका हुआ है। आज हिंदुस्तान जैसा गरीब देश जहां लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही गरीब को, वो लोग जिनके बैंक के खाते नहीं हैं, उनसे ये कहना कि आप केवल क्रेडिट कार्ड लो, डेबिट कार्ड लो, कैशलेस इकोनॉमी आज दुनिया में कहीं नहीं है। ये भारत की बैंकिंग व्यवस्था को चौपट कर दिया।
इससे पहले रविवार की छुट्टी के दिन सुबह सुबह आकाशवाणी के सभी प्रसारण केंद्रों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 26वां संस्करण लेकर फिर लोगों के बीच पहुंचे। इस कार्यक्रम में भी उन्होंने नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया।
देश में सुधार लाने के एक महाअभियान का आरंभ करने की मैंने चर्चा की थी। जिस समय मैंने ये निर्णय किया था, आपके सामने प्रस्तुत रखा था, तब भी मैंने सबके सामने कहा था कि निर्णय सामान्य नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन निर्णय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उस निर्णय को लागू करना है। और मुझे ये भी अंदाज था कि हमारे सामान्य जीवन में अनेक प्रकार की नई नई कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, और तब भी मैंने कहा था कि निर्णय इतना बड़ा है, इसके प्रभाव में से बाहर निकलने में 50 दिन तो लग ही जाएंगे और तब जाकर के नॉर्मल अवस्था की ओर हम कदम बढ़ा पाएंगे। 70 साल से जिस बीमारियों को हम झेल रहे हैं, उस बीमारियों से मुक्ति का अभियान सरल नहीं हो सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में सेना के जवानों के साथ मनाई गई दिवाली के अपने अनुभवों और कश्मीर के बदल रहे हालातों के साथ ही कुछ दूसरे मसलों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी पर संसद में हंगामा काट रही विपक्षी पार्टियों को जवाब देने चाहे सदन में ना उतर रहे हों, लेकिन संसद के बाहर अपनी चुनावी रैलियों और अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात जैसे मंचों पर वे सीधे जनता के सामने अपने इस फैसले का बचाव करने जरूर उतर रहे हैं। रोहित जोशी, BBC दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
BBC हिंदी।
ये BBC रेडियो है और आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। और अब वक्त है संडे दिनभर में उस इंटरव्यू का जिसका आप सबको इंतजार है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आक्रोश, आरोहण, अर्धसत्य और कई देसी विदेशी फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का ही नहीं बल्कि समीक्षकों का भी दिल जीतने वाले अभिनेता ओम पुरी से। ओम पुरी के अभिनय का लोहा पूरी दुनिया ने माना है और उनसे जुड़े कई दिलचस्प किस्से सुने सुनाए जाते हैं। BBC हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी से बातचीत में उन्होंने अपने एक्टिंग क्लास के और जीवन के कई अनुभवों को साझा किया। आइए सुनिए बातचीत।
आज की शाम से पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी माताजी को याद करें जो आपकी सफलता देखने से पहले ही संसार को छोड़ के चली गई। कैसे याद करेंगे आप उनको, क्या बताएंगे? अगर आज वो होती तो आप उनसे क्या कहते? माँ
देखो, वो माँ तो नहीं मिल सकेगी मुझे, लेकिन सड़क पर जाती हुई माएँ दिखती हैं जो गरीब हैं और जो परेशान हैं, जो दुखी हैं। मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बारिश हो रही थी, रात का समय था, मैंने देखा फुटपाथ पे एक बुढ़िया मतलब दीवार का सहारा लेके ऐसे निढाल पड़ी हुई है और मेरा हॉस्टल बिल्कुल नज़दीक था और मैं अकेला उसको नहीं उठा पा रहा था, हालांकि दुबली पतली थी। मैं भाग के गया, दो लड़कों को लेके आया, हम लोग उसको उठा के हॉस्टल ले गए और हमारा हॉस्टल जो था कंबाइंड था, मतलब लड़के लड़कियों का इकट्ठा हॉस्टल था, लेकिन किसी भी कहीं भी आप उसको लॉक नहीं कर सकते थे हॉस्टल को, और कोई वारदात नहीं हुई 3 साल में। खाना इकट्ठे, और बाकी एक सेक्शन लड़कियों की, एक लड़कों की। तो लड़कियों ने बहुत मदद की, टॉवल लाई, उसको अपनी कोई साड़ी पुरानी पहनाई, फिर हम उसको हॉस्पिटल छोड़ के आए थे। तो मुझे उसमें अपनी माँ दिखाई दी। मेरी माँ, जब मैं मामा के घर रहता था और छुट्टियों में जाता था, जो जो मुझे पसंद था, जैसे पीले चावल मटर डाल के या कढ़ी या जो भी चीज़ पसंद थी, वो 5-7 दिन में ही खिला देती। और मुझे बड़ा तकलीफ़ होती थी जब वो पड़ोस से एक कटोरा आटा लेके आती थी उधार, कि भाई मेरे पिताजी जब लाएंगे आटा तो वो लौटा देंगे, या एक कटोरी चीनी शक्कर ला रही हूँ। तो मैं जब गरीब किसी महिला को देखता हूँ तो मुझे उसमें अपनी माँ दिखाई देती है। अफसोस है मुझे कि मैंने तो BA सेकेंड ईयर में था जब उनकी मृत्यु हुई और हमारे पास दवाई तक के पैसे नहीं थे।
आप में से जो लोग जानते हैं NSD को, वो इसको समझते होंगे कि बहुत छोटे से गांव से आया हुआ बच्चा, यंग लड़का, वो कदम बढ़ा रहा है, वहां देख रहा है कि सब साथ में मिलजुल के थिएटर कर रहे हैं। मैं उसको महसूस कर सकता हूं पूरी साहब। तो वो जो अपने बावलपुर हाउस जो है उसमें अब अंदर आपने कदम रखा और पंजाब के गांव से आप आए थे, उसमें जाइए और बताइए हमारे लोगों को।
देखिए, एक तो ये कि जब मैंने उसका प्रोस्पेक्टस मंगवाया, उसको पढ़ के मैं इतना इम्प्रेस हो गया, मुझे लगा कि मैं आर्मी स्कूल में जा रहा हूँ।
अच्छा।
उसका एक सेंटेंस मुझे याद है, उसका मीनिंग मुझे उस वक्त, क्योंकि मैं तो पंजाबी मीडियम से पढ़ा हूँ और उस वक्त अंग्रेजी माशाल्लाह सैटरडे अक्टूबर, तो बहरहाल, हाँ, तो उसमें था नो अनकैम्प्ड स्टूडेंट विल बी अलाउड इन द क्लास।
नो अनकैम्प्ड स्टूडेंट,
या अच्छा, ये कमबख्त अनकैम्प्ड क्या है यार? डिक्शनरी में देखा कि मतलब शेव नहीं किया या अनटाइडी, ये वो। ये तो था आर्मी स्कूल।
इसी को डिफाई करने के लिए NSD गए थे?
नहीं, बहरहाल देखिए, एंग्जाइटी होती है, थोड़ी नर्वसनेस भी होती है, और ऐसा नहीं कि मैंने शहर नहीं देखा था। चंडीगढ़ में भी टैगोर थिएटर में हमने प्लेस किए थे जब मैं बॉम्बे में था, फिर बेंगलोर में भी किया था, पूना भी आए थे, बॉम्बे भी आए थे। तो वो बिल्डिंग देख के, और फिर हम लिफ्ट से ऊपर गए, थर्ड फ्लोर पे हमारा नेशनल स्कूल ड्रामा था, भाई बाकी स्टूडेंट्स को देखा और देख रहे हैं कि भैया इनके बीच में हमारा कोई चांस है कि नहीं है जी, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या है। लेकिन उसके पहले मैंने काफ़ी थिएटर 2 साल तो उनके साथ किया ही, कुछ फॉरेन प्लेज की ट्रांसलेशंस और ओरिजिनल हिंदी प्लेज, ओरिजिनल पंजाबी प्लेज। मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई जब यहाँ इतनी सराहना मिल रही है ऑडियंस से, क्रिटिक्स से, तो मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि वहाँ सिलेक्शन ना हो। हालांकि सीटें बहुत कम होती थी उस वक्त, टोटल 12 पूरे हिंदुस्तान से, अब तो खैर 25-30-35 ऐसा कुछ है। हम तो बस एक पीस मैंने पंजाबी में किया था और एक हिंदी में किया था, 2 पीस परफॉर्म किए थे।
राफी के बैच में आपके करीबी दोस्त नसीरुद्दीन शाह भी थे?
जी।
उनसे आपकी पहली मुलाकात को कुछ याद है? क्योंकि बाद में आप दोनों लोग लगभग एक तरह का थिएटर करके लगभग एक तरह का सिनेमा आप लोगों ने किया, लेकिन आप दोनों के बारे में जो क्रिटिक्स की राय है वो काफी अलग अलग है, उस पर मैं आऊंगा बाद में। लेकिन इंटरेक्शन जो आपका नसीरुद्दीन शाह से पहला हुआ और थिएटर के बारे में जो बातचीत हुई, आप दोनों एकदम एक दूसरे के करीब आए या पहले झगड़ा भी हुआ, इख्तलाफात हुए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
मारपीट हुई?
मारपीट हुई
नहीं, बोली बोली
कभी ऐसे ओके नहीं चले?
कभी भी नहीं, नसीर छोड़ो किसी पे भी नहीं है। अंग्रेजी में तो हाथ तंग था, यहाँ कमबख्त इंग्लिश मीडियम। 3 तो हमारी लिटरेचर की क्लासेस होती थी, मॉडर्न इंडियन ड्रामा जो कि हिंदी में, क्लासिकल इंडियन ड्रामा वो भी हिंदी में, वेस्टर्न ड्रामा वो अंग्रेजी में, और बाकी मेकअप क्लास है, दूसरी क्लासेस होती थी, मेकअप था, म्यूजिक था, थिएटर आर्किटेक्चर, ये वो, मतलब बहरहाल अंग्रेजी मुझे परेशान कर रही थी और मैं बड़ा घुटा हुआ महसूस करता था और चुप रहता था। तो अलकाजी साहब को 4-5 महीने बाद कुछ शक हुआ कि यार, उन्होंने एक सीनियर को, MK रैना को मेरे पीछे लगा दिया कि इसका पता कर इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो उसने एक दिन बिठाया, चाय के बहाने पटा लिया मुझे, फ्री में चाय मिल रही है, और पूछा क्या है, ये है वो है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं तो वापस जा रहा हूँ, ये अंग्रेजी तो
अपने बस की बात
नहीं है। तो उसने अलकाजी साहब को बताया, जो कि ही इज आइडियल टीचर, नाउ ही इज 91 माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले क्या प्रॉब्लम, अंग्रेजी क्या चीज़ होती है? इट्स ए लैंग्वेज. पंजाबी सीखने में तुम्हें परेशानी हुई थी बचपन में? मैंने कहा नहीं जी. और हिंदी बोलने में? मैंने कहा नहीं. दोनों वो भाषाएं हैं, ये भी भाषा है. और इसको इम्प्रूव करने के लिए सुबह अखबार आता है, 10 मिनट ऊंचे ऊंचे अखबार पढ़ो अंग्रेजी का. दोस्त लोग बातचीत करते हैं अंग्रेजी में, उनको सुनो, उनके साथ बात करो. अगर गलती हो जाए, गलत सेंटेंस बोल दिया, अगर वो हंस दे तो इग्नोर करो उनको, भीट बनो. रेडियो सुनो, रेडियो की न्यूज़ सुनो. तो इस तरह के उन्होंने, या शॉर्ट स्टोरीज लेके उसको रीड अलाउड, और उससे उन्होंने कहा देखो तुम स्पीच में यू आर ब्रिलियंट, योगा में यू गेट 98-97% मार्क्स, इम्प्रोवाइजेशन, एक्टिंग क्लास, तो व्हाट इज दिस ब्लडी लैंग्वेज, व्हाई यू आर वरीड अबाउट इट. और आज मैंने कम से कम 20 इंटरनेशनल फिल्मों में काम कर लिया. और लेकिन वो अलका जी साहब की देन, मैं उनका देनदार हूँ. उन्होंने ना सिर्फ हमें एक्टिंग सिखाई, उन्होंने हमारे कैरेक्टर्स भी बनाए. हमें एक कैरेक्टर बिल्डिंग, अच्छी वैल्यूज, टू बी अ गुड सिटीजन, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये बहुत कम टीचर्स हैं जो ये करते हैं. अच्छा इंसान बनाना माँ बाप पे छोड़ देते हैं, लेकिन वो ऐसे टीचर थे, अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी ट्यूशन लेने आ जाते थे सुबह सुबह फ्री में. कोई गरीब स्टूडेंट है उसकी मदद, स्कॉलरशिप मिलता था हमें, 200 रुपये मिलते थे, और मेरा तो उसमें गुजारा हो जाता था. ना मैं सिगरेट पीता था, ना शराब पीता था, और नॉनवेज भी नहीं खाता था. हफ्ते में एक बार नॉनवेज बनता था. और मेरा जो धर्म बर्बाद किया है वो मेरे जिगरी दोस्त नसीरुद्दीन शाह ने किया है.
उन्होंने मांस खाना सिखाया?
हाँ. अरे मेरे सामने बैठ के हम लोग खाना साथ में खाते थे. वहाँ बैठे एक दिन बोलते हैं अरे शोरबा ट्राई करना था, वो चावल पे डाल दिया, खा के देख, खा लिया. अंडा खा चुका था, मेरे पिताजी ने खिला दिया था अंडा. तो मैंने कैसा है? अच्छा यार. अगले हफ्ते उसने एक छोटी सी बोटी डाल दी, बोले इसमें हड्डी नहीं है, ट्राई कर, खा ली.
अच्छा लगा?
अच्छा लगा. अब फिर शुरू, फिर तो पूरी दुनिया में घूम के सब कुछ उड़ा दिया.
नसीरुद्दीन शाह ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें बहुत इस बात का जिक्र आता है कि वो स्कूल से ही इंटरनेशनल सिनेमा देखने लगे थे, इंटरनेशनल सिनेमा को समझने की कोशिश करने लगे थे, इंटरनेशनल जो थिएटर ग्रुप्स हैं उसमें वो शामिल हुए थे या उनके पीछे जाने लगे थे.
तो हमारे तो स्कूल में देखिए, एक तो जर्मन डायरेक्टर आए थे, फ्रिट्ज बेनेविट्स, उन्होंने प्ले डायरेक्ट किया था और ही वॉज एन अथॉरिटी ऑन ब्रेख्त. फिर एक आए थे ब्राजील से, उन्होंने एक प्ले किया था. फिर एक जापान से आए थे जो कि प्रोफेसर थे इलियोनोस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमारे साथ काबुकी किया था. और काबुकी इज अ जापानीज फॉर्म ऑफ थिएटर जो कि बड़ी ड्रामेटिक और बड़ी स्टाइलाइज्ड, संवाद भी स्टाइलाइज्ड, वो किया था. और उसमें मुझे मेन भूमिका मिल गई थी और उससे नसीरुद्दीन शाह को मिर्चें लग गई थी क्योंकि वो बड़ा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे. नसीरुद्दीन शाह और एक हमारे कुलीग और थे जसपाल सिंह, इनकी गर्लफ्रेंड्स थी. अब मुझे बड़ी नफरत हो गई थी उनसे, कमबख्तों से अंग्रेजी बोल बोल के लड़कियां पटा लेते थे. बहरहाल तो
अभी नफरत का वो
नहीं, अरे अरे छोड़, अब हम बहुत आगे नहीं.
अच्छा.
तो उनकी जो दोनों गर्लफ्रेंड्स थी वो डायरेक्शन में थी और इनको कहा कि देखो यहाँ इस स्कूल में तो डायरेक्टर्स को भी अगर वो अच्छे एक्टर हैं रोल मिलते हैं तो तुम लोग डायरेक्शन लो और रोल तो तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे. तो इनको बढ़िया लगा. और फिर एक नाटक की कास्टिंग हो रही थी और कास्टिंग का तरीका ये था कि हमारा एक सेमिनार रूम ऐसे होता था, अलकाई साहब बैठते थे और सब लड़कों से रोल्स पढ़वाते थे अलग अलग. तो 4-5 दिन हो गए मुझसे जो मेन रोल है नहीं पढ़ाया जा रहा. और मुझे, मैंने कहा हम एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं यार, ये डायरेक्शन वालों को पढ़वा रहे हैं मेन रोल, नसीरुद्दीन शाह और जसपाल सिंह को, नसीरुद्दीन शाह को जसपाल से मेन रोल पढ़वा रहे थे. और मैंने हिम्मत जुटा के एक दिन अलकाई साहब से, हम सब घबराते थे, ही वॉज लाइक यू नो अथॉरिटेरियन डिसिप्लिनेरियन. तो मैंने उनको अंग्रेजी में कहा, उनका तीर उन्हीं पे मार दिया. मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, आई वॉन्ट टू से समथिंग. क्लास में सन्नाटा. उनको लगा ये गया आज अलकाई साहब को बोल रहा है, आई वॉन्ट टू से समथिंग. उन्होंने कहा यस. आई सेड सर वी आर एक्टिंग स्टूडेंट्स एंड दीज टू जोकर्स आर गाइडेंस जोकर्स आर डायरेक्शन स्टूडेंट्स, सो द प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द एक्टर्स. सन्नाटा. अलकाई साहब भी खामोश. उससे से मुंह लाल. ऑल राइट यू रीड द मेन पार्ट टुमारो. क्लास खत्म हो गई, सब उठ के चले गए. मैं ऐसे बैठ गया क्लास में, गुरु मैंने ठीक किया कि गलत किया। थोड़ी देर बाद उठ के बाहर आया तो नसीरुद्दीन शाह दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। मैं आया, उसने कहा ओम आई न्यू आई गेट चोक व्हेन आई से दिस, आई न्यू यू विल स्पीक वन डे। दैट वाज द बिगनिंग ऑफ आवर फ्रेंडशिप।
क्या बात।
और वो जो काबुकी प्ले था इबारागी, जाहिर है हमको तो मौका नहीं मिलता यहाँ हिंदुस्तान में उसको देखने का, लेकिन मैं आपको एक हल्का सा उसका आभास दे देता हूँ कि एक मतलब कॉस्ट्यूम्स एलेबोरेट, गाउन है, म्यूजिक भी होता है उसके साथ, आपको रिदम के साथ वो मूवमेंट्स भी करनी होती हैं,
जैसे हमारे यहाँ कथकली होता है कुछ कुछ उस तरह का।
हाँ हाँ, मतलब इट्स लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग। और संवाद जो है हिंदी में थे लेकिन विद जैपनीज इंटोनेशन। जैसे उसमें एक लाइन थी उदाहरण के लिए कि मौसी एक्चुअली डीमन है लेकिन मौसी के भेष में आई है और वो नाराज होकर लौट रही है क्योंकि हमने उसकी इच्छा पूरी नहीं की और वो उसको बुला रहा है। तो वो कैसे बुलाता था? मौसी
नेता ओमपुरी से बात कर रहे थे बीबीसी हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी। और आइए अब चर्चा कर लेते हैं खेल समाचारों की। आज खेल के लिहाज से बड़ा अहम दिन था भारत के लिए। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एक साथ भारत के दो दो खिलाड़ी खिताबी मुकाबले के लिए मैदान में उतरे लेकिन दोनों में से कोई जीत नहीं सका। क्या हुआ मैदान पर, सुनिए आदेश कुमार गुप्त से, आ चुके हैं स्टूडियो में। जी आदेश जी।
जी निखिल जी, देखिए सबको इंतज़ार था कि ये संडे सुपर संडे होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और पिछले दिनों चाइना ओपन जीतने वाली भारत की पीवी सिंधु महिला एकल वर्ग के फाइनल में चौथी वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताइजू युंग का सामना नहीं कर सकी और 41 मिनट में 21-15, 21-17 से हार गई। दरअसल जैसे ही ये मुकाबला शुरू हुआ तो थोड़ी ही देर में ताइजू युंग को समझ आ गया कि नेट पर वो बहुत गलतियाँ कर रही, यानी कि खुद जो उनके रिटर्न थे नेट से टकराकर उनके ही कोर्ट में गिर रहे थे, जिसका फायदा लगातार पीवी सिंधु को मिल रहा था। और उसके बाद ताइजू युंग ने थोड़ा अपने आप को पीछे रखा और स्मैश का सहारा लेकर खेलना शुरू किया, जिसका फ़ायदा उन्हें ये मिला कि उनके जो क्रॉस कोर्ट शॉट थे वो सिंधु की समझ में बिल्कुल नहीं आए। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस तरह से ताई ने सेमीफाइनल में कैरोलिन मरीन को हराया था उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था, जिसका फ़ायदा उन्हें मिला। और जहाँ तक पुरुष एकल वर्ग की बात है, समीर वर्मा भी वहाँ पर गैर वरीयता हासिल हांगकांग के लॉन्ग एंगस से 50 मिनट तक चले कड़े संघर्ष के बाद 21-14, 10-21, 21-11 से हार गए। और अगर क्रिकेट की बात की जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच मोहाली में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब भारत ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 271 रन बना लिए थे। आज इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 283 रन पर समाप्त हुई। आज जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब आर अश्विन 57 रन बनाकर खेल रहे थे, उनका साथ दे रहे थे रविंद्र जडेजा 31 रन बनाकर। आज भारत के चेतेश्वर पुजारा ने 51 और विराट कोहली ने 62 रनों की अर्धशत के पारी खेली, जबकि पार्थिव पटेल के बल्ले से भी 42 रन निकले लेकिन अजिंक्य रहाणे का खाता नहीं खुला। मुरली विजय केवल 12 रन बनाकर आउट हुए तो अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे करुण नायर भी केवल 4 रन बनाकर रन आउट हुए। फिलहाल भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड से केवल 12 रन पीछे है, उसके 4 विकेट बाकी हैं।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और आइए अब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है तो प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। भारतीय राज्य पंजाब में एक कथित सिख चरमपंथी के जेल से फरार होने के बाद पुलिस ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वे नगद लेन देन कम से कम करें और इसके बदले डिजिटल माध्यमों से अधिक भुगतान करें। क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो के निधन के एक दिन बाद भी देश शोक में डूबा हुआ है। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि पूर्वी अलेप्पो के विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों से हजारों की संख्या में नागरिक रातों रात भागकर सरकार के नियंत्रण वाले पश्चिमी इलाकों में पहुंच गए हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया संदीप सोनी ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं अजीत सारथी। 1.5 घंटे बाद आपसे घटनाचक्र में फिर मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए सभी साथियों से अनुमति। नमस्कार।